अगली कौम कौम मदियन हजरत शुएब की कौम बिजनेस वाली कौम थी, पैसा माल इनका मामला था। आइए इनकी कहानी बढ़ते हैं। और मदियन वालों की तरफ हमने इनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, और नापतोल में कमी ना किया करो। आज मैं तुमको अच्छे हाल में देख रहा हूँ, मगर मुझे डर है कि कल तुम पर ऐसा दिन आएगा जिसका अजाब सबको घेर लेगा। इसको हाईलाइट करें। अच्छा लीडर, चाहे वह अपने वक्त का नबी है या कोई दाई दीन है, उसका काम क्या है कि लोगों को वक्त से पहले वॉर्न कर दे कि जो तुम्हारा लाइफस्टाइल है, आज तो तुम खुश हो लेकिन कल इसका नतीजा सजा है। देखिए, मोमिन की फरासत बहुत होती है। हदीस में तो इत्तक फरासतुल मोमिन, मोमिन की फरासत से डरो, क्योंकि ये अल्लाह की बुरहान से देख लेता है। जिस तरह पहले बड़े लोग होते थे ना, वक्त आने से पहले ही कह देते थे अब ये होगा, तो हिकमत है ना, जीनियस होता है इंसान। इसी तरह से अल्लाह के मिजाज को समझते हुए वक्त से पहले प्रिडिक्ट कर दिया जाता है, और करना ये अच्छी बात है। बात लोग इसे ऑफेंड होते हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं ऐसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तो हकायक दिखाते हैं, ऑब्जर्वेशन से चीजें दिखाती हैं। हजरत शुएब ने बजाय इसके कि ये होता उन पे अजाब आ जाए फिर रोकते, वक्त से पहले वॉर्न कर दिया कि ठीक हो जाओ वरना अल्लाह की बड़ी मार पड़ने वाली है तुमको। मुझे डर है कि तुम पर ऐसा दिन आएगा जिसका अजाब सबको घेर लेगा, और बिरादराने कौम, ठीक ठीक इंसाफ के साथ पूरा नाप और तोलो, और लोगों को इनकी चीजों में घाटा न दिया करो, और जमीन में फसाद न फैलाते फिरो। अल्लाह की दी हुई बचत तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम मोमिन हो। इसको हाईलाइट कर लें। या जुम्मते मुस्लिमा के नाम भी मैसेज है, बकीयतुल्लाह की खैर। देखिए, तिजारत हलाल है, नफा लेना हलाल है, जायज कमाई में बड़ी बरकत है। ये आयत बताती है कि थोड़ी इनकम सही, थोड़ा प्रॉफिट सही, लेकिन हलाल है, उसमें तुम्हारे लिए बरकत है। अगर तुम मोमिन हो तुम उसी में खुश होगे। बहरहाल, मैं तुम्हारे ऊपर कोई निगरानीकार नहीं हूं। उन्होंने जवाब दिया, अब देखिए तानों पे आ गए, जहां आप सोसाइटी के इस तरह के मामलात को हिट करेंगे लोग अग्रेसिव होंगे। आप लोगों को कहिए नमाज पढ़ो, वो कहेंगे हाँ बड़ी अच्छी बात आपने की, नमाज पढ़नी चाहिए। आप कहते हैं लोगों रोजे रखो, वो कहेंगे बहुत अच्छी बात है शाबाश। आप कहते हैं देखो सूरत रोज पढ़ा करो, कुरान पढ़ा करो, लोग कभी भी माइंड नहीं करते, हमेशा खुश होंगे। डूस पे उनको हुक्म दे, दे आर हैप्पी। जहां डोंट्स पे बात आएगी, डोंट डू दिस, डोंट टेक दिस, डोंट डू दिस, वहां लोग परेशान होंगे। 10 नेकियां करना आसान है, एक गुना छोड़ने की निस्बत। आज भी आप देखिए वही हुक्म दीन के लोगों को चुभते हैं जिससे लाइफस्टाइल में मसला आता है। तो कौम मदियन ने हजरत शुएब को ताना दिया क्या? आइए देखिए, शायद कभी आपको भी मिला होगा, नहीं मिला तो मिलेगा। जब लोगों पे आप उंगली उठाएंगे, लोग आपकी नमाज और आपके दीन को पॉइंट आउट करेंगे। कैसे? कालू या शुएब सलातुकुना। उन्होंने कहा, शुएब क्या तेरी नमाज तुझे ये सिखाती है कि हम इन सारे माबूदों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते थे, या ये कि हमको हमारे माल को अपनी मर्जी से खर्च करने का कोई इख्तियार ही नहीं। ये भी देखिए आज के लोगों का मसला, कहते हैं जी हमारी मेहनत है, हम कमाते हैं, आपको क्या लगे? ये मौलवियों को क्या लगे? हम मेहनत से कमा रहे हैं तो मौलवियों को तो बाकी कुछ नहीं लगना चाहिए, लेकिन माल देने वाले ने कुछ रूल्स दे दिए तो लिहाजा कहते थे ये आप क्यों इंटरफेयर करते हैं हमारे मनी मैटर्स में, आप जाके मस्जिद में नमाज पढ़ाएं बस, आपको क्या पता हमारे क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या पता हमारी क्या इश्यूज हैं और हमारी क्या पॉलिसीज हैं। इन नकल अंतल हलीम रशीद, हाँ बस एक आप ही तो आली जर्फ और रास बाज इंसान रह गए। तानों पे ताने, इनको क्या पता। आज भी चंद पढ़े लिखे और दुनिया में अल्लाह ने जिनको दौलत दी है उनसे पूछ लीजिए, वो कहेंगे इनको क्या पता हमारे क्या हालात है, इनको क्या पता बैंक के बगैर तो आज काम ही नहीं होता, इनको क्या पता सूद के बगैर तो काम नहीं चलते, रिश्वत दिए बगैर तो जी आजकल कुछ होता ही नहीं है। ये बिल्कुल वही सेंटेंसेस हैं। क्या आप अपना दीन अपने पास रखे, जाइए आप फर्ज भी पढ़ चुके नफिल पढ़े, जाए शाबर जाके सुन्नतें पढ़े, जाए तस्बीह नमाज शुरू कर लें ताकि हमें डिस्टर्ब ना करें। लोग दीनदारों से सिर्फ दुआएं कराना चाहते हैं, वो उनकी जुबान से अपनी जिंदगी पर तनकीद नहीं सुनना चाहते, तो लिहाजा यही बातें करके उन्होंने इधर बात कर दी। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, अब हर जगह आप नबियों का देखिए, और हजरत शुएब को खतीबुल अंबिया भी कहते हैं, कहते इतनी खूबसूरत बात करते थे कि जब बात करते तो लोग सुनते रह जाते, और इसमें आपको इसकी झलक दिखेगी। कहने लगे, भाइयों तुम खुद ही सोचो कि अगर मैं अपने रब की तरफ से खुली शहादत पर था, फिर इसने मुझे अपने हाथ से अच्छा रिस्क भी दिया, क्या पता चला कि दीन का काम कर रहा हूं लेकिन भूखा नहीं मर रहा, रिस्क हसन मिला है मुझे। फरेब का रिस्क नहीं मिला, तो इसके बाद मैं तुम्हारी गुमराहियों और हराम होरियों में तुम्हारा शरीक हाल कैसे हो सकता हूँ? और मैं ये हरगिज़ नहीं चाहता कि जिन बातों से मैं तुमको रोकता हूँ इनका खुद इर्तकाब करूँ। मैं तो इसलाह करना चाहता हूँ जहाँ तक मेरा बस चले, और ये जो कुछ मैं करना चाहता हूँ इसका सारा इन्हिसार अल्लाह की तौफीक पर है। इसी पर मैंने भरोसा किया और हर मामले में इसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। ऐ बिरादरान कौम, मेरे खिलाफ तुम्हारी हठधर्मी कहीं ये इस नौबत तक न पहुंचा दे कि आखिरकार तुम पर भी वही अजाब आकर रहे जो नूह, यहूद, सालेह की कौम पर आया था, और लूत की कौम तो तुमसे कुछ ज्यादा दूर भी नहीं। देखो, अपने रब से माफी मांगो और इसकी तरफ पलटाओ। बेशक मेरा रब रहीम है और अपनी मखलूक से मोहब्बत रखता है। क्या आपको शुएब अलैहिस्सलाम की इस पूरी स्पीच में कहीं ये मशवरा मिला कि ओके फिर बी कॉम्प्रोमाइजिंग, सिमिलेट देम, इफ यू कैंट बीट देम ज्वाइन देम, फिर अल्लाह को पता है कोई नहीं, फिर बाद में तस्बीह कर लेना लंबी सी, या वदूद की या गफूर की, चलो फिर जाओ जो हो रहा करो। किसी नबी ने वक्त के पीयर प्रेशर में आने पर दीन के हुक्म छोड़ने का हुक्म नहीं दिया। आज अगर कोई दीनदार देता है तो वो ज्यादती करता है, और ऐसे ही दीनदारों ने दूसरों का भी हक मार दिया। फिर लोग कहते हैं कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है ओके, कोई कहता है नहीं। देखिए, सब नेचुरल पे रहेंगे, प्योर पे रहेंगे ना, तो किसी की अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होगी। हजरत शुएब के इस जवाब पे अब जरा कौम का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, शुएब तेरी तो बहुत सी बातें मैं समझ ही नहीं आती। हमारे और आपके बीच में बैरियर है, आपकी तो वेवलेंथ ही नहीं हमसे मिलती। आज भी लोग ये कहते हैं, हम पढ़े लिखे माशाल्लाह बिजनेसमैन इंटरनेशनल लेवल के, हमारी मीटिंग्स होती, हम यूएनओ में बैठते उधर जाते, और शुएब साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, हमें तो समझ ही नहीं आती। आज भी यही है, वेवलेंथ नहीं मिलती दीनदारों से। और कैसे, और हम देखते हैं कि तू हमारे दरमियान एक बेजोर आदमी है, तेरा कोई जोर ही नहीं, किसी सदर, वजीर, मशीर से कोई तेरे ताल्लुकात ही नहीं है। तेरी बिरादरी ना होती तो हम तुझे कभी का संसार कर चुके होते। तेरा बलबूता तो इतना भी नहीं कि हम पे भारी हो। देखिए, ये बातें कौन बोलता है जिसके दिल में इज्जत नहीं होती। हमारी नजर में जो बड़ा होता है ना, हम उसकी नजरों में बड़ा बनना चाहते हैं, और जिसको हम वैल्यू नहीं देते ना, हम उसकी केयर भी नहीं करते। यहां ये बात बता के उन्होंने बिरादरी का ताना दिया कि तू है भी तो मसला ये कि गैर बिरादरी का। जवाब सुनिए, शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा, भाइयों, क्या मेरी बिरादरी तुम पर अल्लाह से ज्यादा भारी है कि तुमने बिरादरी का तो खौफ किया और अल्लाह को बिल्कुल पसे पोछ डाल दिया? जान रखो कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो अल्लाह की गिरफ्त से बाहर नहीं है। ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपने तरीके पर काम किए जाओ और मैं अपने तरीके पर करता रहूंगा। जल्द ही तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर जिल्लत का अजाब आता है और कौन झूठा है। तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ चश्मे भरा हूँ। आखिरकार जब हमारे फैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से शुएब और इनके साथी मोमिनों को बचा लिया। वही बचते हैं, डोंट वरी, थोड़े से बच जाएंगे, बहुत सारे चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास हक था। और जिन लोगों ने जुल्म किया था इनको एक सख्त धमाके ने ऐसा पकड़ा कि वो अपनी बस्तियों में बेहिसो हरकत पड़े के पड़े रह गए, गोया कि वो कभी वहां रहे बसे ना थे। सुनो, मदियन वाले भी दूर फेंक दिए गए जिस तरह समूद फेंके गए थे। ये कौम भी गई, वो कहते ना खस कम जहां पाक, एक और कौम से जमीन पाक हो गई। यहां आप देखिए कि राह तुका, तेरी बिरादरी, सुन्नतों से ज्यादा जब लोगों को बिरादरियां और खानदान और उनके रस्म व रिवाज प्यारे हो जाएं तो ये तबाही की अलामत है। देखिए, खानदान की खिदमत करना अच्छी बात है, लेकिन ताजीम नहीं करना, आप कह लीजिए कि रिस्पेक्ट करना है, उनको होली नहीं बनाना। और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं, ये सारी बातें हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप इससे इबरत लें। अब इसके आगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा तस्करा, और मूसा अलैहिस्सलाम को हमने अपनी निशानी और खुली सनद मामूरियत के साथ फिरौन और इसके आने सल्तनत की तरफ भेजा, मगर उन्होंने फिरौन के हुक्म की पैरवी की, हालांकि फिरौन का हुक्म रास्ती पर न था। अल्लाह कह रहे हैं कि फिरौन जो लोगों के लिए हीरो बना हुआ था, उसका हुक्म दुरुस्त न था। क़यामत के रोज वह अपनी कौम के आगे आगे होगा और अपनी पेशवाई में ने दोजख की तरफ ले जाएगा। कैसी बदतर जाए वरूद है ये जिस पर कोई पहुंचे, और जिन लोगों पर दुनिया में लानत पड़ी और क़यामत के रोज भी पड़ेगी। कितना बुरा सिला है जो किसी को मिले। बस मूसा का इतना ही तस्करा इधर कर दिया, क्योंकि आगे भी बहुत जगह आएगा। क्या पता चला यहाँ किससे पूरे हुए? इमेजिन कीजिए मक्का में अल्लाह के नबी की मुखालफत जोर पकड़ रही है। अब सारी कौमों के किस्से हालात आपके जरिए मक्का वालों ने सुन लिए। क्या करना चाहिए था मक्का वालों को? फौरन तौबा करते, अल्लाह के नबी की वैल्यू पहचानते, लेकिन कुछ भी नहीं किया। जिनके दिल में इबरत लेने का शौक नहीं होता ना, वो सारा कुरान भी पढ़ के इबरत नहीं ले पाते। इबरत वाले जहन से लेंगे तो बात समझ आएगी। फिर यहाँ एक और चीज देखिए जो बहुत ही खूबसूरत है, आप खुद इस चीज की तस्दीक करेंगी। जब आप स्कूल कॉलेज में थे तो आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी? हमारे मुल्कों में जब हिस्ट्री का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, उसके पढ़ाने का और कुरान में हिस्ट्री पढ़ाने का अंदाज आपने फर्क नोट किया? दो बातें करके ना, तो इबरत की बात, दिल नरम करने की बात, तकवा की बात, अल्लाह की मोहब्बत की। फिर थोड़ा सा किस्सा क्या बताए, अगर लोगों को हिस्ट्री पढ़ानी है तो इबरत के साथ पढ़ाओ। कम से कम स्कूल कॉलेज तक तो हमें ये पता ही नहीं चला था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्या चीज है। ट्रिप्स के साथ जाते थे, गए थे, पूरे फिरे, टीचर्स भी गई, हम भी गए, खाया पिया और दोस्तों के साथ मोहब्बत की बातें कर करा के शाम को बस में बैठ के वापस भी आ गए। मुझे नहीं याद कि हमारे ट्रिप के अंदर किसी ने हमें एक बार भी वहां से इबरत लेना सिखाया हो। इसी तरह का कोई तजुर्बा आपका भी हुआ होगा। आज हम इबरत के लिए कुरान पढ़ रहे हैं, और ये कुरान जोग्राफी और तारीख ऐसे नहीं पढ़ा देता, यकीन करें लॉ भी पढ़ाता है। आपने सूरह मायदा पढ़ी है और आगे भी जाके पढ़ेंगे। इतना बोरिंग सब्जेक्ट लगता है लोगों को लॉ एंड शरिया एंड रूल्स लाइक इस तरह की चीजें, कुरान ने उसको भी इतना दिलचस्प बना दिया। हार्ट सॉफ्टनिंग, साथ एक हुक्म, फिर दिल नरम, फिर दिल सोजी, फिर कहीं जन्नत की बात, कहीं जहन्नम की बात। इसी तरह अपने बच्चों को सिखाया करें, सर पकड़ के उनके पीछे ना पड़े, एक बस कड़वा जुमला बोले, 3 सेकंड चुप रहे, उसके अंदर जाए। जब फील हो कि मासूम सर चेहरे पे रंग बदल रहा है, तो साथ ही सीने से लगा के उसको प्यार करें। नहीं मेरा बच्चा, देखना तू तो बहुत अच्छा बच्चा बनेगा। कभी एकदम थप्पड़ दो और एक पे दूसरा फतवे फतवे, और बिल्कुल बोलते ही ना जाए, कभी कोई नहीं आपकी बात सुनेगा। हम जब इतनी लंबी ग्रामर शुरू कर लेते हैं और सारे सीगे इस्तेमाल कर देते हैं उस वक्त बच्चों को समझाने के, तो बस दफा वो फ्रेंड होते हैं। अल्लाह से सीखें कि अल्लाह किस तरह दिलसोजी करता है। क्यों आज भी ये किताब हम इतनी दफा पढ़ते हैं फिर हमें अच्छी लगती है? कितनी दफा आप सबने पढ़ा होगा ये पारा, कितने दौरे कुरान में? सच बताएं आपको पढ़ते हुए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितनों को लग रहा है ये नबियों की कहानियां बोरिंग, इतनी ओल्ड फैशन बुक्स? इसके बरक्स आप हिस्ट्री की बुक खोले, मुझे खुद अच्छी तरह याद है, कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं तो खुद हैरान हूं कि ये मुझे इतना इंटरेस्ट हो कैसे गया, कुरान पढ़ने के बाद हुआ। जब सीरा पढ़ी उसके बाद हिस्ट्री से शौक हुआ। अभी भी आप सुनते हैं जब मैं ये ऐसे वाक्य सुनाऊं, मैं अपने मेमोरी से सुनाती हूँ। लेकिन एक वो वक्त था कि जब भी 10वीं तक तो आपको पढ़नी पड़ती है, उसके बाद तो मैंने भी साइंस ही पढ़ी, लेकिन उसमें हिस्ट्री थी। तो जिस दिन पेपर सामने होता था तो मैं रोती थी, कहती थी ये बाबे खुद मर गए, हमें मुश्किल में डाल गए। और क्या पढ़ाते थे? शाह वलीउल्लाह। अब नाम सुनी शाह वली, अब शाह वलीउल्लाह के नाम के साथ हुज्जतुल बालिगा सामने खुल जाती है, उनकी फौजुल कबीर और क्या कुछ कहानियां खुलती हैं, उनकी मेहनतें। और हमें क्या सिखाते थे? इस साल पैदा और सन याद कराते थे। भाई आपको क्या लगे उनके पैदा होने? और जो पूरा वक्त ज्योग्राफी और हिस्ट्री में सन लिख लिख के सफे काले कर देते थे, फिर गलत लिख के आते थे। जरा भी अच्छा नहीं लगता था ये सब्जेक्ट, क्योंकि तरीका बोरिंग है, बहुत बोरिंग तरीका। एक तस्वीर कलर सी बाबा जी की लगाई होती थी, और ये बाबा जी सर सैयद अहमद खान और वो, और कभी नहीं सोचा कि ये कौन शख्सियत थी। कुरान पढ़ा तो आंखें खुली, अब उन सब के नामों के साथ डिफरेंट फीलिंग्स हैं। तो बस दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस किताब की कदर की तौफीक दे। अब आप कहानियों के एंड पे कंक्लूजन, ये ऐसे लग रहा है अल्लाह के नबी को मक्का में बिठा कर ये सारी कहानियां सुनाई गई, और क्यों सुनाई गई? ताकि आपका दिल मजबूत हो। अब अगला सब हिस्सा वो नबी सल्लम से खिताब है, क्या है? अब हम आपको इससे मॉरल्स देते हैं। कैसे? ज़ालिक मिन अंबाइल कुरा नक़ुस्सुहु अलैका मिन्हा क़ाइमुन व हसीद। ये चंद बस्तियों की कहानियां हैं जो हम आपको सुना रहे हैं, इनमें से बाज अब भी खड़ी हैं और बाज की फसल कट चुकी। हमने इन पर जुल्म नहीं किया और उन्होंने आप ही अपने ऊपर जुल्म ठाया। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो इनके वो माबूद जिन्हें वो अल्लाह को छोड़कर पुकारा करते थे, इनके कुछ काम ना आए, उन्होंने हलाकत और बर्बादी के सिवाय इन्हें कुछ फायदा ना दिया। याद रखिए, जितना किसी चीज की तरक्की का मान कर लें, जब पकड़ आती है ना मशीनें काम आती हैं, ना गैजेट्स काम आते हैं, ना रिसर्चेस काम आती हैं। और जो वाकई बुतों को पूछते थे, उनके बुत भी आके उनको अल्लाह की पकड़ से नहीं बचाए। हर कौम जो तबाह हुई, जिसका हमने किस्सा पढ़ा, उसके बुत थे। लेकिन आपने कहीं भी सुना कि कौम समूद पे अजाब आया और उनका एक बुत आके आके खड़ा हो गया? कहीं भी नहीं है। आज भी यही, आज का बुत साइंस है, आज का बुत बड़ी बड़ी मशीनें और बड़ी बड़ी इन्वेंशन है, बस लोग इसी पे मान करते हैं, हमने ये बना लिया। वो जुमला तो आपने सुना ही होगा ना कि टाइटैनिक को तो खुदा भी नहीं डुबो सकता, वो डुबा के दिखा दिया अल्लाह ने कि तुम क्या समझते हो। तो ये चीजें भी तब काम आती हैं जब अल्लाह चाहता है, इसीलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं अल्लाह के हुक्म के आगे कोई चीज नहीं टिकती। और तेरा रब जब किसी जालिम बस्ती को पकड़ता है फिर इसकी पकड़ ऐसी हुआ करती है, फिलवा के इसकी पकड़ बड़ी सख्त और दर्दनाक होती है। हकीकत ये है कि इसमें एक निशानी है हर उस शख्स के लिए जो जब आखिरत का खौफ करे, वो एक दिन होगा। अब आप देखिए फिर दिल सोजी है ना, यही खूबसूरत तरीका है, सख्त बातें फिर जहन्नम फिर जन्नत साथ साथ चलती हैं। फरमाया वो एक दिन होगा जिसमें सब लोग जमा होंगे, फिर जो कुछ भी इस रोज होगा सब की आंखों के सामने होगा। हम इसके लाने में कुछ ताखीर नहीं कर रहे, बस एक गिनी चुनी मुद्दत इसके लिए मुकर्रर है। जब वो आएगा तो किसी को बात करने की मजाल ना होगी इल्ला ये कि अल्लाह की इजाजत से कुछ अर्ज करे। आज तो बहुत बोलते हैं ना, क्यामत के दिन खिगी बन जाएगी, जुबान बंद होगी, हलक खुश्क होगा, कोई वहां जाके लंबी चौड़ी बातें नहीं पेश कर सकेगा। फमिन हम शकीयुम व सईद, कुछ लोग उस दिन बदबख्त होंगे और कुछ नेक बख्त होंगे। जो बदबख्त होंगे वो दोजख में जाएंगे जहां गर्मी और प्यास की शिद्दत से वो हांपेंगे और फुंकारे मारेंगे। ये जो जफीर और शहीक है ना, गधे की आवाज है। आपने देखा होगा गधा एक दफा ऊंची आवाज निकालता है फिर आवाज हल्की करता है, एक को जफीर कहते हैं तो एक को शहीद कहते हैं। यानी जहन्नुम में गधों की तरह ढेंचू ढेंचू कर रहे होंगे और इसी हालत में वो हमेशा रहेंगे जब तक कि जमीन और आसमान कायम है, इल्ला ये कि तेरा रब कुछ और चाहे। बेशक तेरा रब पूरा इख्तियार रखता है कि जो चाहे करे, रहे वो लोग जो नेक बख्त निकलेंगे। दुआ कीजिए अल्लाह में इन लोगों में शामिल करते हैं तो वो जन्नत में जाएंगे और वहां हमेशा रहेंगे जब तक जमीन और आसमान कायम है, इल्ला ये कि तेरा रब कुछ और चाहे। ऐसी बख्शिश इनको मिलेगी जिसका सिलसिला कभी मनकते ना होगा। पस ए नबी तो इन माबूदों की तरफ से किसी शक में ना रहे, जिनकी ये लोग इबादत कर रहे हैं ये तो बस लकीर के फकीर बने हुए हैं, इसी तरह पूजा पाठ किए जा रहे हैं जिस तरह पहले इनके बाप दादा करते थे, और हम इनका हिस्सा इन्हें भरपूर देंगे बगैर इसके कि इनमें से कुछ काट कसर हो। हम इससे पहले मूसा को भी किताब दे चुके हैं और उसके बारे में भी इख्तलाफ किया गया था जिस तरह आज इस किताब के बारे में इख्तलाफ किया जा रहा है जो तुम्हें दी गई। अगर तेरे रब की तरफ से एक बात पहले से तय न कर दी गई होती तो इन इख्तलाफ करने वालों के दरमियान कभी का फैसला चुका दिया गया होता। और ये वाकया है कि ये लोग इसकी तरह से शक और हिलजान में पड़े हुए हैं, और ये भी वाकया है कि आपका रब इन्हें इनके आमाल का पूरा पूरा बदला देकर रहेगा। यकीनन वो इनकी सब हरकतों से बाखबर है। सोचे कोई भी अल्लाह से छुपा हुआ नहीं है, अल्लाह को सब पता है कौन इस वक्त भी क्या कर रहा है। हम तो चले एक दूसरे के सामने है ना, कोई इधर उधर भी तो हो सकते हैं ना, कोई अकेला भी तो घर में है ना, कभी तन्हाई में भी अगर कोई गलत काम करने को दिल चाहे तो इस आयत पे नजर कर लीजिए, इन्नहु बिमा तामलून बसीर, जो तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है, और अल्लाह ताला की नजर इंसान के ऊपर लगी हुई है। लिहाजा बहुत ही खूबसूरत आयत है, हाईलाइट कीजिएगा, फस्तकिम कमा उमिरता वमन ताबमा कबला तत्गौ इन्नहु बिमा तामलून बसीर। बस फिर क्या करें, ठीक ठीक राह रास पर साबित कदम रहें। यानी क्या कहा, पस से नबी आप और आपके वो साथी जो कुफर और बगावत से ईमान और इताअत की तरफ पलट आए हैं, ठीक ठीक राह रास पर साबित कदम रहो जैसा कि आपको हुक्म दिया गया, और बंदगी की हद से तजावुज ना करें। जो कुछ आप कर रहे हैं इस पर आपके रब की निगाह है, इन जालिमों की तरफ जरा न झुकना वरना जहन्नुम की लपेट में आ जाओगे, और तुम्हारा कोई ऐसा वली और सरपरस्त ना होगा जो आपको अल्लाह से बचा सके और कहीं से आपको मदद ना पहुंचेगी। और देखें नमाज कायम करें दिन के दोनों सिरों पर और कुछ रात गुजरने पर। मुफस्सरीन कहते हैं ये हैं वो आयतें जिन्होंने अल्लाह के नबी के सर के बाल सफेद कर दिए थे। बड़ी सख्त आयतें हैं अल्लाह के नबी के लिए कि आप भी अगर इनकी तरफ झुक गए तो आपके ऊपर भी पकड़ आ जाएगी। हम तो शुक्र है कुरान समझते कोई नहीं, इसलिए हमारा बाल ही कोई नहीं सफेद होता। जो इस किताब को समझ जाता है ना, वो इस गम में बूढ़ा हो जाता है कि वो नक्शे जो कुरान ने खींचे वो उसको इस दुनिया में नजर आते हैं। तो जब दुनिया में वही कुछ हो रहा है जो पिछली कौमों ने किया, तो इंजाम भी तो वही होगा जो उनका हुआ। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस बात की फिक्र लगा दे। फिर फरमाया, दर हकीकत नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं, ये एक तस्कीर है। जालिका जिक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, इस कुरान का एक और खूबसूरत नाम जिक्रा, रिमाइंडर। भूल जाते हैं फिर अल्लाह याद दिलाता है, इन लोगों के लिए जो अल्लाह को याद रखने वाले हैं। और सब्र करो, अल्लाह नेकी करने वालों का अजर कभी जाया नहीं करता। सोचे अपनी कोई नेकी सोचे जो आपने मुश्किल हालात में की, और आप फिर कहिए कि अल्लाह अजर जाया नहीं करता, तो खुशी हो रही है कि गम? खुशी होती है। फिर क्यों ना इन कौमों में से जो आपसे पहले गुजर चुकी हैं, ऐसे अहले खैर मौजूद रहे जो लोगों को जमीन में फसाद बर्पा करने से रोकते। ऐसे लोग निकले भी तो बहुत कम जिनको हमने इन कौमों में से बचा लिया, वरना जालिम लोग तो इन्हीं मजों के पीछे पड़े रहे जिनके सामान इन्हें फरावानी के साथ दिए गए थे, और वो मुजरिम बनकर रहे। आपका रब ऐसा नहीं कि बस्तियों को नाहक तबाह कर दे, हालांकि इनके बाशिंदे इसलाह करने वाले हों। ये भी नोट कीजिए, जहां लोग इसलाह करें, खैर के काम करें, अल्लाह वहां कभी तबाहियां नहीं लाता। बेशक आपका रब अगर चाहता तो तमाम इंसानों को एक गिरोह बना देता, मगर अब तो वो मुख्तलिफ तरीकों ही पर चलते रहेंगे, और बेराह रवियों से सिर्फ वो लोग बचेंगे जिन पर आपके रब की रहमत है। नोट करें, कौन बेराह रो होने से और भटकने से बचता है? जिसपे अल्लाह का रहम हो। तो दुआ करते अल्लाह हमारी नस्लों पर अपना रहम कर दे। इसी आजादी, इंतखाब और इख्तियार और इम्तिहान के लिए तो इसने इनको पैदा किया था। वतम्मत कलिमतु रब्बिका लअमलअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमाइन, और आपके रब की वो बात पूरी हो गई जो उसने कही थी कि मैं जहन्नम को जिन्न और इंसानों सब से भर दूंगा। सोचिए इस पे 3 सेकंड तक। जहन्नम को अल्लाह भरेगा, और हदीस में आता है कि अल्लाह जहन्नम को भरेगा, फिर उसके ऊपर ढक्कन डाल देगा, अपना पांव रख देगा, फिर वो कहेगी कित्तुन कित्तुन, फिर अल्लाह पांव उठाएगा। जैसे तंदूर में रोटियां लगाकर या ओवन में चिकन डालकर ऊपर से बंद कर दे, अल्लाह कहते हैं मैं भरूंगा जहन्नुम में। तो आप और मैं इसको झुटला सकते हैं? आज ये भी एक डाउट है कि नहीं, ये रियल जहन्नुम नहीं है, ये बस एक इमेजिनरी थिंग है, बस ऐसे ही वो जले भुलेंगे। ये जलना वही है जो हम उर्दू में कहते हैं मैं जल के रह गई, हालांकि अल्लाह कह रहे हैं मैं जहन्नुम में डालूंगा। वकुल नकुस्सु अलैक मिन अंबाए रुसुल, ए नबी, ये पैगंबरों के किस्से जो हम आपको सुनाते हैं, ये वो चीजें हैं जिनके जरिए से हम आपके दिल को मजबूत करते हैं कि फिक्र ना करें, पिछले नबी भी झुटलाए गए, आप भी झुटलाए जा रहे हैं, लेकिन मदद एंड पे नबियों की हुई। इनके अंदर आपको हकीकत का इल्म मिला, और ईमान लाने वालों को नसीहत और बेदारी नसीब हुई। रहे वो लोग जो ईमान नहीं लाते, तो इनसे कह दो कि तुम अपने तरीके पर काम करते रहो, और हम अपने तरीके पर किए जाते हैं। इंजामे कार का तुम भी इंतजार करो, और हम भी मुंतजर हैं। आसमानों जमीन में जो कुछ छुपा हुआ है सब अल्लाह के कब्जे कुदरत में है, और सारा मामला इसी की तरफ रुजू किया जाता है। बस है नबी, इसी की बंदगी कीजिए और उसी पर भरोसा रखें। जो कुछ तुम लोग कर रहे हो आपका रब उससे बेखबर नहीं। तो ये थी सूरत हुद।